وإن أحد من المشركين استجارك، أگر ایک بھی کوئی مشرکوں میں سے استجارہ کا اس یعنی پناہ مانگے تم سے، فَأَجِرْهُ، تو پناہ دے دو اس کو، یعنی پورے جزیرہ عرب میں سے کوئی مشرک آپ سے مہلت مانگتا ہے کہ جی 4 مہینے گزر گئے ہیں، یعنی اب 4 مہینے گزرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، آپ سے مہلت مانگتا ہے، مہلت سے مطلب پناہ مانگتا ہے آپ سے کہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے سوچنے کا، یا مجھے اپنی ٹائم چاہیے دیکھنے کا، یا اور کچھ سمجھنے کا مجھے ٹائم چاہیے، میں نے ابھی کچھ سیکھنا ہے یا دین کو، یہ اس کو اسلام کو اور سمجھنا ہے، تو چاہے اتنا ٹائم گزر بھی گیا تو آپ پھر اس کو پناہ دے دیں. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، قرآن سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو اس کی پناہ کی جگہ پہ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر، اس آیت کو کیوں نہیں لوگ پروموٹ کرتے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ دیکھیں قرآن میں فقتل المشرکین حیث وجہ تم ہو، تو پھر یہ بھی بتائیں یہ قرآن یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ کوئی اگر ایسا ہے جو آپ سے پناہ چاہتا ہے، وہ اس کو پھر قتل نہ کرو، اس کو پناہ دو، اور اس کو اللہ کا کلام سننے دو، وہ اللہ کا کلام سنے گا، سمجھے گا، دیکھے گا، مسلمانوں کے رہن سہن کو اور دیکھے گا، مسلمانوں کا اخلاق، ان کا کردار دیکھے گا، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے. لیکن کلام سننے کے بعد بھی ایسے نہیں کہ اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہو اب ملاتے ہو کہ نہیں اسلام، اب میں نے تمہیں پناہ دی تھی، نہیں، پھر جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ اس کی امن کی جگہ پہ، یعنی جس کنٹری جس جگہ کا بھی ہے وہاں تک امن کی جگہ تک اس کو چھوڑو. اس لیے کیونکہ اگر اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا تو کوئی اور مسلمان آ کے اس کو قتل کر دے گا، اس کو کیا پتا کہ اس نے اس کو پناہ دی بھی تھی. آپ جاؤ اس کو جا کے چھوڑ کے آؤ کہ وہ جہاں پہ اپنے آپ کو سیفٹی زون میں پہنچ جائے، اپنے بارڈر پار کرنا ہے یا جو بھی آج کے وقت کے مطابق بارڈر پار کرنا ہے یا کچھ، اور جہاں پہ بھی اس کا امن کا علاقہ ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو کہ وہ محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا، ہمیں تو اتنا تم نے قرآن سیکھ لیا، ابھی بھی نہیں تم ہوتے مسلمان تو اب تو ہم ماریں گے تمہیں، نہیں یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا کتنا بڑا ایکسکیوز دیا، ذالک بھی ان قوم لا یعلم، یہ اس وجہ سے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. جو تم سے انٹریکشن کریں گے، تمہارے ساتھ دیکھیں گے، تم سے قرآن سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، سمجھ آئے گی، پھر وہ خود ہی اسلام لے آئیں گے. اور یہ ہر دور کا ایک ٹول ہے، ہر دور کا، کہ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود بھی صحیح دین پہ ہیں تو بڑی بڑی تقریریں وہ کام نہیں کر سکتی، بڑی بڑی دعوت دینے، بڑے بڑے پمفلٹ بانٹنے کرنے، یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو مسلمان خود کر سکتا ہے، اس کا اپنا کردار اور اخلاق دوسرے کو دکھاتا ہے، جتنا اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ بتایا، وہ بےچارے وہ لوگ ہیں نہیں ان کو پتا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور آج اکثریت کو دیکھیں نہیں پتا، ان کو وہ پتا ہے. آپ کہتے ہیں کیسے نہیں پتا جی، وہ تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آج کس کو نہیں اسلام کا پتا. نہیں، ان کو واقعی وہ پتا ہے جو ٹی وی ان کو بتائے گا، ان کو وہ پتا ہے جو میڈیا ان کو بتا رہا ہے، لیکن ان کو سچا اسلام نہیں پتا، یقین کریں نہیں پتا. کیونکہ نمبر ون چیز کہ ہم خود ہی زوال کی اس انتہا پہ پہنچے ہوئے کہ ہمیں دیکھ کے نہیں کوئی سمجھ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ بےچارے کیا ہم سے سیکھیں گے. اسی وجہ سے تو دیکھیں کئی کئی گھروں کے اندر غیر مسلم عورتیں کام کرتی ہیں، کبھی وہ امپریس نہیں ہوتی ہمارے کردار اخلاق اور ہمارے رویے دیکھ کے کہ وہ مسلمان ہو جائے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کوئی غیر مسلم کسی مسلمان ملک میں آیا ہو اور وہ آ کے دیکھے اور کہے یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے تو ہم بھی یہ بن جائیں. اس لیے کہ ہماری جو حالات ہیں وہ دیکھ کے کیا کوئی کہے گا، بھاگے گا دور اس دین سے، آئے گا نہیں. لیکن جس وقت مسلمان واقعی سچے مسلمان تھے نا، तो सिंध में कैसे इस्लाम फैला? मुसलमान ताजिर आते थे यहाँ पे, मर्चेंट्स होते थे, वो यहाँ पे आते थे, ट्रेडिंग करते थे, उनके साथ जब इंटरेक्शन होता था तो ये लोग इस तरह फिर इस्लाम लेकर आए। और वो आपको मिसाल याद होगी सुमामा बिन असाल की, कि सुमामा बड़े सरदार थे, पकड़े गए थे, और जब इनको लाया गया था, इन्होंने, ये भी 6 हिजरी की बात है, भेस बदल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन सहाबा ने इनको पकड़ लिया। जब पकड़ के लाया गया इनको, तो मस्जिद के सतून से इनको बांध दिया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते थे तो पूछते थे, सुमामा तुम्हारे नजदीक क्या है, सुमामा तुम्हारे नजदीक क्या है? तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक खैर है, अगर कत्ल करोगे तो एक किसास वाले को कत्ल करोगे, यानी मेरे पीछे मेरा बदला लेने आ जाएंगे, और अगर एहसान करोगे तो एक कदरदान पे एहसान करोगे, और अगर माल चाहते हो तो मांगो जितना चाहते हो, जो चाहोगे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े सरदार थे अपने कबीले के। आपने उनको इसी हाल पे छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर गुजरे, फिर यही गुफ्तगू हुई, तीसरे दिन गुजरे, फिर यही सवाल जवाब हुआ, फिर उसके बाद आपने फरमाया सुमामा को छोड़ दो। अब सुमामा जब बंधे हुए हैं मस्जिद नबवी के सतून से, तो सहाबा को देख रहे हैं आते जाते, कुरान को सुन रहे हैं, इस सोहबत में हैं वो, जहां पे दिन और रात अल्लाह ताला की तौहीद की बात बयान की जाती है, जहां पे वो इनके रवैये देखते हैं, इनके किरदार देखते हैं, इनका नमाज रोजा और इनकी ये सब, इनके अखलाक देखते हैं, तो ये सारा उन्होंने उस दिन से देखते रहे, सुनते रहे, समझ आ रही थी। तो जब इनको छोड़ दिया गया, और इनको छोड़ दिया गया, आप जाएं, चले गए, गए किसी दूसरी जगह पे, जाके वहां पे गुसल किया, वापस आए और कलमा पढ़ लिया। उसी वक्त क्यों नहीं पढ़ा था, कि कोई ये ना समझे कि मैं इस डर की वजह से पढ़ रहा हूं कि इनके पास हूं अभी। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, वल्लाही पूरी जमीन पे कोई चेहरा इससे पहले मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज्यादा काबिले नफरत नहीं था, लेकिन अब आपका चेहरा मेरे नजदीक दूसरे तमाम चेहरों से ज्यादा महबूब हो गया, और वल्लाही रुए जमीन पर कोई दीन मेरे नजदीक अल्लाह के दीन से ज्यादा नापसंदीदा नहीं था, मगर अब आपका दीन मेरे नजदीक सारे अदियान से ज्यादा महबूब हो गया। क्या देखा था उन्होंने, क्या चीज उनके सामने आई थी? अगर वह ऐसे नहीं थे ना किरदार और इखलाक सहाबा के, ऐसे नहीं थे ना उनके तरीके और रवैये जैसे हमारे हैं, जो शुरू ही नफरतों से होते हैं, और इसको हम इस्लाम समझते हैं। अगर आप अपने इंटरेक्शन में साफ नहीं होंगे, आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या लेंगे? उनको वो जिसमें है वो उसमें ठीक है, फिर तो वो कहेंगे ऐसे झूठों के दीन को अपना के हमने क्या करना, इतने बद्दियानत फ्रॉड लोगों के दीन को अपना के हमने क्या करना, हर जगह हमारे फ्रॉड हैं, हर जगह हमारे झूठ हैं, हर जगह हमारी ऐसी चीजें हैं, तो क्या हम अपना इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं? इसी तरह जब तक हम उनको चांस नहीं देंगे कि वो हमारे, हमें देखें, हमें सुने, हमें समझें, हमने अपने डोर्स बंद कर दिए होंगे उनके ऊपर, अपने चैनल्स क्लोज किए होंगे उनके ऊपर, कोई उनके साथ ताल्लुक वास्ता ही नहीं रखना हमने, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है, इनसे हमें नफरत है, इनसे हम मुंह मोड़ेंगे, तो क्या हम उनको दावा करेंगे? याद रखें एक बात, दावा सबको बहुत पसंद है, और हर एक हम में से चाहता है कि बस फला मुसलमान हो जाए, वो भी मुसलमान हो जाए, हाय कितना अच्छा वो मुसलमान है, बड़ी हमें ये होती है, हम सबको बड़ी इस चीज की तड़प होती है, ये सारे मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, और मेरे हाथ पे कोई मुसलमान हो जाए, ये तो इतनी तड़प होती है। लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, कि ये दावा वो फील्ड है, ये एक वो फील्ड है जिसमें इंसानी हमदर्दी का एलिमेंट होना जरूरी है। सेल्फिश लोग दावा नहीं कर सकते, ये वो कर सकता है जिसमें दर्दे दिल हो, जिसमें इंसानियत का गम हो, जिसमें सिंसेरिटी हो, खलूस हो। अगर मेरे दिल में सिर्फ अपनी जात, अपने घर वाले, अपना खानदान, ये ही है बस, और इसी की मोहब्बत में मैं डूबी हुई हूं, और सारी दुनिया जाए जहन्नुम में, मुझे इससे क्या, अगर ये है ना तो फिर जितना मर्जी मैं कहती रहूं हाँ ये सब मुसलमान हो जाए, हाँ ये कितना मजा आए अगर मेरे हाथ पे कोई मुसलमान हो जाए, फिर ये सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली बातें हैं, और ये कभी नहीं होना। बात तो ये है कि अगर वाकई हम चाहते हैं ना कि हमारे हाथों कोई मुसलमान हो जाए, तो हमारे अंदर कितनी तड़प है उसके लिए, कितनी इंसानियत की तड़प है, कितनी उनकी फिक्र है, या सिर्फ खाली बातें ही हैं। हमें तो अपने मुसलमानों को भी, और गैर मुसलमानों तो छोड़े, उनको भी बुलाने के लिए तड़प नहीं होती, उनको भी बुलाने के लिए हमारे पास सिर्फ बातें होती हैं, फलो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये देखो कितने बुरे हैं, ये करते हैं, उनके अंदर वो बुराइयां, हर एक के बारे में जजमेंट, उनके लिए भी दिल में खैर ख्वाही नहीं होती। हाँ ये होता है कि हाँ आ जाए, चलो ठीक है, आके सुन लें, आके पढ़ लें, अच्छा है मेरे कहने पे आ जाएंगे, मुझे सवाब मिलेगा। सवाब का अपना होता है लालच, बिल्कुल होता है, और कोई इसमें बुराई नहीं, लेकिन उससे ज्यादा तड़प होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब का नहीं था कि मेरे मुझे कितना सवाब मिलेगा, कितने लोग मुसलमान हो जाए तो मेरा कितना सवाब बढ़ जाएगा, उनकी तड़प थी जो उनको रातों को सोने नहीं देती थी, उनकी तड़प थी जो आंसू बन के छलकती थी, क्यों वो गम में इनके रोते थे, क्यों उनको चैन नहीं आता था, इसलिए नहीं कि मेरे सवाब ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, नहीं ये आएंगे तो मुझे सवाब कम मिलेगा, नहीं, बेलॉस थे। जब बेलॉस हो के आप काम करते हैं ना, और आपको सवाब और ये बातें, कितने लोग मुझे कहेंगे कि देखो भाई वाह इसके हाथों पे तो 4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इसके हाथों पे 8-10 लोगों ने, ये नहीं होगा। जब ये होगा ना, हाँ ये जहन्नुम में चले जाएंगे, ये उस आग में जलेंगे, नहीं मैंने इनको बचाना है, ये एक इंसान की नेचर में होता है। अगर आपकी नेचर सेल्फिश है ना, तो वो खानदान वालों के लिए भी सेल्फिश होगी, वो हमसायों के लिए भी सेल्फिश होगी, वो अपने और रिश्तेदारों वगैरह के लिए भी सेल्फिश होगी, फ्रेंड्स में भी सेल्फिश होगी, और वो गैर मुस्लिमों के साथ भी सेल्फिश होगी। ये नेचर पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर थी लविंग, इवन रिसालत से पहले भी, जब आप अभी आपको रिसालत नहीं मिली थी, उससे पहले भी आपका किरदार अखलाक क्या था, जब पहली वही नाजिल हुई, हजरत खतीजा ने क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक बीवी क्या गवाही दे रही थी, वो जो बेवाओं का, यतीमों का ख्याल करने वाले, मिसकीनों के मदद करने वाले, गरीबों के, फकीरों के, उनकी दादरसी करने वाले, ये किरदार था आपका, यानी पहले से दिल के अंदर ऐसी चीज थी, और ये ऐसे ही नहीं हो जाती, ये एक इंसान की नेचर में होता है, ये आपने तारी नहीं, ये उसकी वाकई अपने आप को देखें कि मेरे अंदर ऐसी खैरख्वाही है अपने इधर, या मैं हर वक्त ये कहती हूँ बस हमें अच्छाई मिल जाए, उनको ना कोई चीज पता चल जाए, कोई अच्छी चीज है ना इसको ना पता चले, वो भी ले लेगी, फिर ये हम अपने अपने इर्द गिर्द वालों के मुतल्लिक कैसे सोचते हैं, हम उनके मुतल्लिक सोचें जो हमारे प्यारे होते हैं, जो हमारे खानदान के होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं। अगर ऐसी सेल्फिशनेस है, इतनी छोटी चीजों के लिए किसी तक खैर पहुंचाने का जज्बा नहीं है, तो इतनी बड़ी खैर पहुंचाने का जज्बा कहाँ से आ जाएगा कि गैर मुस्लिम तक खैर पहुंचाएं और अपनी कहीं अपने आराम को कुर्बान करें, कहीं अपनी जॉब में से कुर्बानी दें, कहीं अपने और टाइम में से कुर्बानी दें, कौन देगा फिर? ये सेल्फलेस लोग काम कर सकते हैं, इसलिए पैगंबरों ने ये काम किए, ये बड़े लोग काम कर सकते हैं, जिनके दिल छोटे छोटे थे वो क्या काम करेंगे, वो हाँ पंपलेट लेके खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, किसी बूथ पे खड़े हो गए, उसको पंपलेट दे दिया, उसको 2 बातें बता दी, उसको कर दी, चलो जी घर चले गए, हमने बड़ा अच्छा वॉलंटियर वर्क कर लिया, हमें क्या अब नहीं होते तो ना हो, हमने तो पहुंचा दिया, नहीं, आपकी दावत के अंदर असर ही तब आएगा जितने आपका दिल नरम होगा दूसरों के लिए, जितनी आपके दिल के अंदर दूसरों के लिए परेशानी होगी, जितनी आपके दिल के अंदर हमदर्दी होगी, जितना आपका दिल रोता होगा दूसरों के लिए, कैसे खैर इन तक पहुंच जाएंगे, और जहां पे दिल ही ऐसे हैं, और एक मुसलमान का दिल ही ऐसे है, ये वो छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी खैर हम नहीं चाहते दूसरे को मिले, तो बड़ी चीज की कैसे पहुंचाएंगे, छोटी सी बात होगी, कोई छोटा सा, कोई छोटी सी रेसिपी होगी, कोई छोटी सी ऐसी खैर की बात होगी जो आपके बच्चे को कहीं से खैर मिल रही है, कोई कोई छोटी सी ऐसी चीज होगी जहां पे आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत ही दुनियावी, इनको भी नहीं हम शेयर करना चाहते, तो ये इतने बड़े खैर के पैगाम को कैसे करेंगे। इनमें भी हम चाहते हैं, इतने सेल्फिश हैं कि मुझे मिले बस, किसी और को ना पता चले। तो इतना बड़ा पैगाम, जन्नत का रास्ता पता हो तो जो सेल्फिश लोग हैं वो फिर अपने लिए ही रखते हैं, दिस इज सेल्फिशनेस। और यही लोग फिर कयामत के दिन कहेंगे कि अल्लाह इनके पास पैगाम था, इन्होंने नहीं हमें दिया। तो हम मैं और आप फिर सेल्फिश करार दिए जाएंगे वहां, इन्होंने वो पैगाम लेके रखा। आज मुझे बताएं, कोविड की कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका नुस्खा आपको पता हो, और आप दुनिया मर रही हो और आप उसको बता नहीं रही हो कि नहीं मैंने नहीं बताना, तो आपको क्या कहा जाएगा बताएं, क्या कहा जाएगा, कितना बुरा समझा जाएगा। आज जन्नत का नुस्खा मुसलमान के पास है, आखरत में जहन्नुम से बचने का रास्ता मुसलमान को मालूम है, उस आग से जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इससे बचने का है मुसलमान तेरे पास है। लेकिन तुम इतने गुम हो अपनी जिंदगियों में, अपने आप में इतने मस्त हो और इतने सेल्फिश हो कि तुम्हें परवाह ही नहीं, लोग मरते जाएं, आग में पड़ते जाएं, और डू यू केयर, हम तो ठीक है, हम तो चले जाएं, हमें क्या परवाह। नबियों का गम ये नहीं होता था कि हम तो चले जाएंगे, हमें क्या, नबियों का गम ही ये था कि सारे बच जाएं। आज मुसलमान ने वो गम कैरी नहीं किया जो उनके नबी का गम था, वो नबी की मोहब्बत का दम तो भरते हैं लेकिन वो गम उन्होंने विरासत में नहीं लिया अपने नबी से, जो नबी को चैन से बैठने नहीं देता था। आज वो गम नजर नहीं आता हमारे अंदर, वो फिक्र हमारे अंदर नहीं, वो सोच ही नहीं है कि किसी और के बारे में सोचे, हम क्यों सोचे किसी और के बारे में, खुद ही अपने बारे में सोचेंगे, खुद ही कहीं से उनको पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो कौम है जो नहीं जानते, इसी तरह बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते, लेकिन हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। उनको कुरान सुनाने के लिए तो बुलाओ, उनको कुरान की तरफ तो लाओ, हो सकता है सुन लेंगे तो उनको समझ आ जाए। इसी तरह उलमा कहते हैं कि कोई काफिर भी है अगर, मतलब हर भी काफिर नहीं हो जिनके साथ जंग है, लेकिन कोई काफिर है अगर वो भी तुमसे पनाह मांगे, जैसे आज कोई इवन चलो हर भी काफिर भी कह लें जिन जिनके साथ अभी तो फिलहाल नहीं कोई ऐसी चीज चल रही, लेकिन अगर कोई ऐसा भी काफिर है, मसलन इसराइल है, इसराइल से कोई स्टूडेंट है वो आके पढ़ना चाहता है किसी मुसलमान मुल्क में जहाँ पे दीन है, जहाँ पे लोगों का ये अखलाक किरदार ऐसा है, तो उलमा कहते हैं उसको आने दो, उसको देखने दो, उसको सुनने दो, वो देखेगा आपको, समझेगा आपको, आपके अंदर रहेगा तो उसको पता चलेगा, वो इंटरेक्ट करेगा आपसे, डील करेगा तो वो जानेगा ना इस्लाम क्या होता है, वो कुरान सुनेगा तो उसको समझ आएगी ना। और सबसे पहले कोई किताब खोल के नहीं बैठ जाता, सबसे पहले वो इंसानों के अंदर देखता है कि उनका दीन क्या है, वो दीन को इंसानों से पहचानता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा हमारे यहाँ कर लिया जाए तो कितना मसला होगा, हाय उनको आने दिया, हाय उनको पढ़ने दिया, हालांकि हमारा दीन क्या बताता है। अगर वो आपसे पनाह तलब, वो मिसाल के तौर पे आपसे वीजा मांगते हैं कि हम यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो आने दो, उनकी हिफाजत भी करो और फिर उनको वापस पहुंचा के भी आओ, ये बाहिफाजत वो चले भी जाए वहां से। तो यहां तक ये पहला रुकू मुकम्मल होता है, और हतमी अहकामात यहाँ पे दिए गए जो 9 हिजरी में उतरे। अब जो 6 हिजरी के बाद जो आयात आई है ना वो यहाँ पे बयान की गई है, ये दूसरी आयात से पहले उतरी है, कि अगर आप ये बात समझ लेंगे तो फिर ये आयात समझनी बड़ी आसान हो जाएंगी। ये 8 हिजरी फतह मक्का से पहले नाजिल हुई है, तो यानी 6 to 8 हिजरी के दरमियान, यानी फतह मक्का भी हुआ नहीं है, मगर आप देखेंगे कि इन आयात में किस तरह से उससे पहले सारा माहौल बनाया गया। कैफा यकून लिल मुशरिकीन अहदु इंद अल्लाह व इंद रसूलिही, कैसे हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, इल्लल्लज़ीन आहदतुम इंद अल मस्जिद अल हराम, सिवाय उनके जिन्होंने तुम्हारे साथ अहद किया मस्जिद हराम के पास। तो इसके अंदर बताया गया कि ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा अहद कैसे हो सकता है जो अपना अहद बार बार तोड़ते हैं और बार बार अहद छिकनी करते हैं, सिवाय उनके जिन्होंने अपना अहद रखा जो मस्जिद हराम के पास जिन्होंने अपना अहद किया था, उनके सिवाय। अब देखें, ये वही लोग हैं कि जिनके साथ बाद में भी अहद निभाया गया, जिन्होंने अपने अहद की पासदारी की। और ये मैं पहले बता चुकी हूं कि ये जो आयतें उतरी, मैंने एक दफा ये आपको बताया, एक दफा उतरने का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ ही उतरी, एक दफा मतलब उतरने का मतलब होता है इनके बीच में नहीं कोई और सूरत उतरी, कोई और आयतें उतरी। तो इन लोगों का अहद कैसे हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल के पास, सिवाय उनके जिन्होंने अहद किया, यानी जो मुसलमानों के फिर हलीफ भी बने और फिर उन्होंने अहद निभाए भी। और बास कहते हैं कि इससे मुराद है हुदैबिया का अहद। फमस्तकामु लकुम फस्तकीमु लहुम, जब तक वो कायम रहे तुम उनके साथ कायम रहो, यानी जितनी मुद्दत वो पूरी करें तो फिर आप भी मुद्दत पूरी करो उनके साथ। जब वो अहद तोड़ दे तो फिर क्या होगा, जो पिछली सूरत में हमें बताया गया सूरह अनफाल में, क्या मुसलमान क्या करेंगे फिर, जो बार बार बददियानती करें खयानत करें तो उनके आगे लाके फेंको, पीछे से नहीं कुछ करना, फिर उनके आगे लाके रखो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबू सुफियान फिर आया था जब इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया था, तो ऐलान यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात ही नहीं की और ना ही सहाबा कराम ने, वो जगह जगह फिरता रहा कि भाई कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरी बात मुआहिदे को रिन्यू करने के लिए कोई मेरी सिफारिश ही कर दे, फिर आखिरकार अपनी बेटी से सिफारिश कराने के लिए गया। वो बेटी कौन थी, उम्मे हबीबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा, तो उम्मुल मोमिनीन। तो जब वो वहां गया अपनी बेटी के घर कि बेटी से आप कहूंगा कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमारे साथ मुआहिदा रिन्यू कर दे, तो जब बैठने लगा तो उन्होंने कहा ठहरे और बिस्तर लपेट दिया, कहने लगी आप बैठे। तो बोला क्या बात है, मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े सरदार थे। तो फरमाती हैं अब्बा जान आप बिस्तर के काबिल नहीं है क्योंकि ये नबी अलैहि सलातो वसलाम का बिस्तर है और आप मुशरिक हैं। तो फिर अब क्या सिफारिश करानी थी जब बेटी ने ऐसा कह दिया, तो अपना सा मुंह लेके वो आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक वो कायम है तो आप कायम रहे, जब तक नहीं है तो नहीं। तो मुशरिकों के साथ यानी बता दिया गया कि अहद मुआहदे की जो तोड़ते हैं बार बार, उनके साथ अहद मुआहदा रखने की जरूरत नहीं है, सिवाय जिनके अहद किया जिनके साथ मस्जिद हराम के पास। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि उलमा कहते हैं सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा है कि आपने वो पूरा करना है, लेकिन जब तक वो कायम रहे तो आप कायम रहेंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि अगर कोई काफिर है तो उसके साथ आपने अहद ही निभाना, क्योंकि वो काफिर है इसलिए इनके साथ तो वादे तोड़ो, इसलिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखने का क्या, ये तो काफिर है तो हम जब मर्जी इनके साथ तोड़े, नहीं। उनके ना कितनी हमें मॉरेलिटी किस तरह सिखाई जा रही है, अहद का पहले भी सिखाया ना सूरह अनफाल में, आपने देखा कितनी प्यारी बात कही गई कि अगर वो तुमसे सुलह करना चाहे ऐन जंग के बीच में तो सुलह कर लो, ये ना फिर कहोगे नहीं इनके पीछे ये साजिश है, ये तो ये सोच रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। फिर कितनी प्यारी बात थी। इस तरह यहाँ पे भी आप देखें, ये नहीं आपको कहा जा रहा कि अगर वो देखो वो चूंकि वो मुशरिक है वो तो ऐसे थे, उन्होंने तो पहले ऐसे किया था, तो इसलिए अब आपने उनके साथ नहीं निभाना। नहीं, जब तक वो तुम्हारे साथ निभाते, तुम भी उनके साथ निभाओ, ठीक है? तो मुआहदे के खिलाफ वर्जी की आपने आपने नहीं मुआहदों के खिलाफ वर्जी करनी, जबकि हमारे पास यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि ये मुशरिक है ना, तो अब हम इनके साथ कोई भी फ्रॉड भी कर सकते हैं, वो भी जायज है। हम इनसे झूठ भी बोल सकते हैं, वो भी जायज है। सब चीजें जायज है क्योंकि ये मुशरिक है। ये कहाँ पे है? कैफा यज़हरू अलैकुम, किस तरह और अगर वो गलबा पा जाए तुम पर, यानी ये कैसे अहद निभाया जा सकता है ऐसे लोगों के साथ, कैसे लोग कि अगर वो तुम्हारे पर गलबा पा जाए, ला यरकुबू फीकुम इल्लम वला दिमा, अगर तुम वो निभाते हैं तुम्हारे साथ अहद तो फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं निभाते, जैसे अब अबू सुफियान आके और वो कहा कि भाई हमारे साथ तजदीद कर ले मुआहदे की, तो इनका हाल तो ये है, ये दूसरों से तो कहते हैं आप निभा लें हमारे साथ अहद और आप पूरा करें अहद, और खुद कर नहीं रहे। और अगर इनका इनकी बारी आती है तो इनका हाल ये है कि फिर ना ये खुद तो दूसरे से तो चाहते हैं कि आप अहद पूरा करें, खुद का ये हाल है कि ना किसी रिश्तेदारी का पास होता है ना किसी मुआहदे का, परवाह ही नहीं होती फिर कि हमारा मुआहदा है या ये हमारे रिश्तेदार हैं। आप देखें कुरैश मक्का के साथ तो सारी रिश्तेदारियां थी ना, तो इनको तो फिर कोई परवाह नहीं होती। तो रिश्ते की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये हमारे साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक है तो ये हमारे साथ सही चलेंगे, लेकिन तब भी इनको परवाह नहीं होती। युर्दूनकुम भी अफवाहिम व कुलूबुहुम, और राजी करते हैं तुमको अपने मुंहों के साथ और इनकार करते हैं इनके दिल। कब राजी कर रहे थे? जिस वक्त अबू सुफियान वहां पे आया, तो उस वक्त उसका ये था कि भाई अपनी बस जुबानी कलामी करके बातें और ये करके कि इनको राजी कर लिया जाए किसी तरह, किसी तरह ये इस पे आ जाएं कि हम वायदा रिन्यू कर रहे हैं, तो बातों से तो बड़ा राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर सिफारिशों के लिए भाग रहा है, उधर भाग रहा है, लेकिन तबा मतलब अबा से है ना, अबा इनकार करना, सख्ती से इनकार करना, तबा इनकार करते हैं कुलूबुहुम उनके दिल, यानी इनके दिल आपके साथ ऐसे नहीं कि दिलों के अंदर आपके साथ रजा नहीं है, ऊपर ऊपर से चापलूसी है और दिल इनके आपसे राजी नहीं है, दिल नहीं माने हुए। वो अक्सर हम फासिकून, इनमें से अक्सर जो हैं फासिक हैं। फिस्क किसको कहा गया यहाँ पे? फिस्क का वैसे मतलब होता है हदों से निकल जाना, लेकिन यहाँ पे मुआहदों को तोड़ने को कहा गया कि मुआहदे तोड़ देते हैं ये, करप्ट लोग हैं। इश्तरऊ बी आयातिल्लाहि थमनन कलीला, उन्होंने बेच डाला अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पे, फसद्दू अन सबीली, ये भी कुरैश मक्का की बात हो रही है। वैसे तो आपको पता है कि यहूदियों के बारे में बार बार ये बात आई ना, सूरह बकरा में भी आपने पढ़ी है कि इन्होंने अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पे बेच दिया, तो मुशरिकीन ने कैसे बेचा था? उन्होंने ऐसे बेचा था कि देखें उनको क्या क्या चीज थी जो उनको मना करती थी इस्लाम लाने से, कि वो कहते थे हम काबा के मुतवल्ली हैं, हमारे पास लोगों के यहाँ पे सारों के बुत पड़े हुए हैं, अब अगर हम इस्लाम ले आते हैं सारे खुदाओं को छोड़ के एक खुदा की पूजा शुरू कर देते हैं तो बताओ फिर ये हमारा काम कारोबार कैसे चलेगा? हज के लिए सारे अपने अपने खुदाओं के लिए यहाँ पे आते हैं, कोई भी नहीं आएगा, हमारी तिजारत बंद हो जाएगी, मक्का में खुद तो कुछ नहीं ग्रो होता था, और फिर हम काबा के मुतवल्ली हैं, हमने इनके खुदाओं को यहाँ पे रखा। आप बुत ना ना समझे, आप ये समझे कि उनके लिए कितनी बड़ी चीज थी कि उनके खुदा पड़े हुए वहां पे, हमने इनके खुदाओं को यहाँ रखा हुआ, तो ये जब हमारे काफले जाते हैं कोई उनको लूटता नहीं है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते, बहुत इनकी रिस्पेक्ट थी कुरैश मक्का की, सरदार समझे जाते थे, बड़े समझे जाते थे, इनका बड़ा मकाम था। आज भी देख लेना आप उस जगह के जो भी खदमत गुजार हैं मुतवल्ली हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, वो उस जमाने में भी इसी तरह था कि इस जगह से अल्लाह के घर से जो लोग अटैच्ड थे उनको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा दिया गया था, और फिर जिसके बुत चाहते थे वो रख लेते थे और जिसके चाहते थे उठा के फेंक देते थे। तो अब सब इनके बड़े यानी इनके सामने बड़े एहसान मंद होते थे कि इन्होंने हमारे खुदा को रखा हुआ है अपने यहाँ पे, और उसके लिए बड़ी इनकी इज्जत वगैरह करते थे, इनका बड़ा नाम था, तो ये सारी चीजें तो हमसे छिन जाएंगी अगर हमने सारे खुदाओं को छोड़ के एक को मानना शुरू कर दिया। इन्होंने तो अल्लाह की आयत को बड़ी थोड़ी कीमत पे बेचा, बड़ी थोड़ी कीमत लगाई इनकी, कि क्या इस दुनिया के लिए ये अल्लाह की आयत को जुटलाते हैं और इसकी वजह से रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से कि हमारी सरदारियां बच जाएं, हमारी तिजारतें बच जाएं, हमारी जो दुनिया के अंदर हमारे सारे अरब के अंदर हमारी धाक है वो बच जाए, ये मफाद चाहते हैं बस। और आप देखें जब भी इंसान दीन को बेचता है ना कोई पीछे दुनिया का गर्ज जरूर होती है, ऐसे नहीं बेचता। कभी देख लें आप किस वक्त हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं दीन पे, खुद सोचें कब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिस वक्त कि हमें दुनिया के कोई लालच होते हैं, या तो किसी की नजरों के अंदर जज जाने का शौक होता है, यहाँ कहीं खौफ होता है हमें रिजेक्ट ना कर दे, उनको भी तो यही था, यहाँ हमारी नौकरी ना चली जाए, यहाँ हमें लोग छोड़ ना दें, हमारे दोस्त हमसे दूर ना हो जाएं, कितनी थोड़ी कीमत लगाई, कितनी थोड़ी और कितनी हकीर कीमत लगाई अल्लाह की आयात के लिए, इनके बदले में अल्लाह की आयतें वो टूट जाए, अल्लाह के हुक्म टूट जाए लेकिन मेरी दोस्तियां ना टूटे, अल्लाह के हुक्म टूटते हैं तो टूटते रहे लेकिन लोगों की नजरों में मैं पसंदीदा बन जाऊं, मैं एडवांस और मॉडर्न कहलाऊं, कितनी थोड़ी कीमत है और कितनी घटिया और हकीर कीमत है जिसके ऊपर हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। कभी सोचते हैं इस बात को, क्या पाया और क्या खोया, सोचा करें उस वक्त क्या पा रही हूं, ये मेरी तो तारीफ कर देंगे, मुझे कह देंगे बड़ी हसीन लग रही, और क्या खोया, अल्लाह का हुक्म तोड़ के मैंने कितना ही बड़ी अल्लाह की रहमत खो दी, अल्लाह की रजा खो दी, पता नहीं अल्लाह की नजरों में उस वक्त कितना गिर जाते होंगे जब उसके हुक्मों को तोड़ के लोगों की नजरों में जचने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। कितनी अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ते हैं जब ऐसे कामों और कारोबारों के अंदर अपने हिस्से डालते हैं जहां से अल्लाह ने मना किया, जितनी भी कीमत मिल जाए, कहते हैं उसके बगैर कारोबार ही नहीं चलता, कहते हैं क्या करें इसके बगैर तो कुछ मुनाफा ही नहीं, कितना मुनाफा ले लोगे, वो जितना भी ले लोगे ना वो थोड़ी कीमत है अल्लाह की आयात के मुकाबले, बहुत थोड़ी और बहुत हकीर, कितने दिन उस पैसे को खा लोगे और कितने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं, सिर्फ समनन कलीला, उनको तो कहते हैं ना उनके तो रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई थी हज के साथ, और वह उस वक्त ट्रेडिंग उसी वक्त होती थी, इनके पास अपने पास क्या था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो इनके तो सारा यानी इकोनॉमी इस पे चलती थी, समझ लें आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी अपनी ठप कर दो, लेकिन याद रखें क्या ठप हुई, नहीं हुई ना, क्योंकि अल्लाह ताला ये बता देता है कि जब तुम अल्लाह के नाफरमान थे जिस अल्लाह ने उस वक्त तुम्हें खिलाया पिलाया, जब उसके फरमाबरदार बन जाओगे तब नहीं खिलाएगा, जिस अल्लाह ने तुम्हें बड़ा फेवरेट बनाया हुआ था लोगों की नजरों में जिस वक्त तुम उसकी नाफरमानी करते थे, तो जब तुम उसके फरमाबरदार बन जाओगे क्या तुम्हें लोगों का दिलों में उनके तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं डाल देगा, तुम्हारे लिए प्यार नहीं डाल देगा, तुम्हें तब नहीं फेवरेट बना सकता वो, इंसान ना भरोसा नहीं करता ना अल्लाह। आप देख लें मिसाल, एक मिसाल आपको देती हूँ, एक वैसे मतलब और बेशुमार चीजों की मिसालें हैं, और मैं मगर वैसे एक जहन के अंदर आई कि जुनेद जमशेद की मिसाल देख लें, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कि वो एक बंदा जब अपने यानी एक हराम कमाई है, गाना बजाना उसके अंदर था, जब वो लोगों का फेवरेट उस वक्त था, जिस वक्त वो अल्लाह की तरफ आया तो कितने दिलों में अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाल दी, तो इंसान ना थोड़ा दिला है ना वो सोचता है कि पता नहीं अल्लाह की नाफरमानी करके मुझे जो कुछ मिल रहा है ये मेरे से खो जाएगा अगर मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगी, अगर अल्लाह के हुक्म को मान लूंगी ना ये चीज मुझसे जो ये पता नहीं क्या जो भी, चाहे वो कोई रिस्क रोजी है, चाहे वो लोगों की नजरों में जचना है, चाहे वो कोई और कोई भी चीज है, ये मुझसे चली जाएगी, तो याद रखें वो समन कलीला, अल्लाह उसके बदले में वो देता है, जब आप अल्लाह की फरमाबरदारी पे आते हैं वो देता है जो आपको दुनिया के लिए भी और आखरत के लिए भी काम आने वाली होती है, जो कायम रहने वाली चीज होती है, जो रब उस वक्त सब कुछ देता है जिस वक्त इंसान नाफरमान होता है, क्या तब ना देगा जब फरमाबरदार बन जाएगा, मगर इंसान कभी भरोसा करके तो देखे, कभी उस रब की तरफ नजरें लगा के तो देखे, कभी उसी से लॉ लगा के तो देखे, वहीं से मिलना, पहले भी वही देता था कि अब ना देगा मुझे, वो इंसान को इतबार नहीं है ना शायद। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह भी एतबार नहीं है। इन्नहुम सा अमा कानू यामलून, बेशक वो कितना बुरा है जो वो अमल कर रहे हैं। ला यरकुबूना फी मुमिनिन इल्ला इल्ला वला दिम्मा, नहीं वो लिहाज करते किसी मोमिन के बारे में किसी कराबत का ना मोहदे का। फिर वही बात ताकीद के लिए कह दी गई कि जब इनकी बारी आती है तो ये नहीं देखते कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। कितना सताया मुसलमानों को वहां पे, ना इनको किसी मोहदे का पास होता है। वह उलाई का हुमुल मुआतदून, और ये हद से गुजरने वाले। अच्छा, ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं? अब आप ना इसको जरा सोचेंगे ना, जब अभी मक्का फतह होने के लिए, अभी यानी मक्का की तरफ अभी रवाना होना है, अभी ये सब सिनेरियो क्या हालात चल रहे हैं, इनके अंदर मुसलमानों की कैफियत क्या होगी? और उनको पता चल गया क्या मुआहिदा टूट गया, उनको पता चल गया कि अब कुछ भी हो सकता है। अब इस सिनेरियो को जहन में रखिएगा, तो ये आयतें बयान की जा रही हैं, आगे भी और ज्यादा आपको कुल के बात समझ आएगी। फंतबुआ कामुसलाता इखवानुकुम फिद्दीन, फिर भी ऐसे लोग भी जो खुद कोई लिहाज नहीं करते, मुआहिदों को तोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, हद से बढ़ते हैं, ज्यादतियां करते हैं। मुसलमानों के साथ इन्होंने जो मक्का में किया था वो कितनी बेरहमी थी और कितनी बदसलूकी थी अपने रिश्तेदारों के साथ। हालांकि ये कबीलों के अंदर रहते थे, ये तो अपने कबीले वालों के लिए जान देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन अपने ही बेटे के साथ, अपने ही भाई के साथ, अपने ही घर वालों के साथ जो सलूक किए गए, जो लोगों ने किए, जो काफरों ने किए, उसकी कोई मिसाल नहीं होती थी वहां पर। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने किया वो कभी नहीं कोई करता था, कोई चच्चा ऐसे नहीं करता था अपने भतीजे के लिए जो अबू लहब ने किया। तो इतनी बेरहमी, ऐसे सलूक, और फिर मुआहदे भी तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये तौबा कर लेते हैं और नमाज और जकात इनको कायम करते हैं, तो ये तुम्हारे भाई हैं दीन में, फिर तुम्हारे भाई, फिर कोई इनके साथ कोई खलिश नहीं दिल में रखनी चाहिए। फिर सब कुछ भूल के फिर वो तुम्हारे भाई हैं। इसका मतलब है कि एक रिश्तेदारी दीन की वजह से भी होती है, कि आप किसी के भाई या औरतें आपस में बहनें बन जाती हैं दीन की वजह से भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हैं, ये नहीं कहा तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हैं वो तुम्हारे दीन। तो दीनी भाईचारा भी एक चीज है, दीनी अखुवत भी एक चीज है। तो फिर जब अगर इन्होंने तौबा कर ली है, तो फिर तुम भी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं रखोगे, फिर तुम्हारे भाई हैं। देख लिया आपने कि मोमिन होता कैसे है, उसे कोई पर्सनल किसी के साथ नहीं ग्रज होता, पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनल कोई किसी के साथ ऐसी इल फीलिंग्स नहीं है। जिस वक्त वो मुसलमान हो गए तो भाई हैं, अगर पर्सनल बेस पे हो तो फिर तो इंसान छोड़ता ही नहीं है। वनुफस्सिलुल आयाति लिक़ौमी यालमून, और हम खोल खोल के बयान करते हैं आयतें उस कौम के लिए जो इल्म रखती हो, जो इल्म लेता है ना उनके लिए सीखने के लिए इन आयतों में बहुत कुछ है। वह इन नकेथु, और अगर वो तोड़ दें ऐमानहुम अपनी कस्मों को, मिम बादी अहदीहिम, पहले क्या कहा था, जब तक वो कायम रखें आप भी कायम रखो, वो वाले मुआहदे को भी आप कायम रखो, लेकिन अगर वो तोड़ देते हैं ना अपने अहद को करने के बाद, वह तानू फी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन में ताना जनी करते हैं, तुम्हारे दीन में ऐब लगाते हैं, तुम्हारे दीन के ऊपर बातें करते हैं और उसके ऊपर तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं उसको, उसकी तौहीन करते हैं, रिमार्क्स पास करते हैं, उसके बारे में गलत बातें कहते हैं, फकातिलु आइम्मतल कुफर, तो फिर जंग करो कुफर के इमामों से। ये आयत उस जमाने के लिए भी है और उलमा कहते हैं आज के लिए भी है, ठीक है? क्या अगर वो अहद को तोड़ते हैं और वो तुम्हारे दीन के अंदर ऐसी बातें गलत बातें करते हैं, तौहीन की बातें करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हर्टफुल बातें करते हैं, तो फिर तुम्हें इनसे लड़ना है कुफर के इमामों से, यानी कुरैश के जो जो बड़े बड़े सरदार थे, जैसी उन्होंने क्या किया, पहले अहद भी तोड़ा और दीन में तानाजनी तो अभी से थोड़ी कर रहे थे, वो तो कब से करते थे, यही काम था उनका। तो इन्नहुम ला अईमान लहुम लअल्लहुम यंतहुम, बेशक वो नहीं कोई अहद उनके लिए, इनके लिए फिर कोई अहद नहीं है, फिर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है ना, फिर इन पे क्या एतबार किया जाए, फिर ऐसे लोगों की कोई कोई वादा उनका वादा नहीं होता, शायद कि रोज रुक जाए। तो फिर ऐसे लोगों के साथ कोई अहद जो ऐसे काम करें उनके साथ तो जंग है, शायद कि फिर वो रुक जाएं इस बात की वजह से, बाज आ जाएं, फिर इनकी कस्मों पे एतबार नहीं करना, इनके वादों पे एतबार नहीं करना। अच्छा अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मुशरिकीने मक्का के साथ तो बात है ही, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कैसे है। उलमा कहते हैं कि अगर कोई जिम्मी है, मैंने बताया आपको जिम्मी कौन होता है, जो कि मुस्लिम कंट्री में कोई ऐसे रहते हो जो गैर मुस्लिम है, तो जिम्मी का भी एक एग्रीमेंट होता है हुकूमत के साथ कि जो जिस मुल्क में रह रहा है जाहिर है उसके कानून को उसके उसको फॉलो करेगा, वो जिजिया देता है या जिसको टैक्स कह दें। तो अगर कोई तौहीन करे दीन की और मुआहदे की पाबंदी ना करे तो वो कहते हैं उसके लिए सजाए मौत है। तो ये जो तौहीन रिसालत का कानून, वो कहते हैं ना कि किस तरह जी तौहीन रिसालत का कानून कैसे है और क्यों उनको सजाए मौत की सजा क्यों नहीं चाहिए, इस आयत की बेस पे है कि जब कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान मुल्क में रहता है तो उसको ये नहीं इजाजत है कि वो मुसलमानों के दीन के या उनके नबी के या इस तरह की कोई बात अल्लाह ताला के बारे में या ऐसे कोई ऐसी तौहीन आमेज बात करे, तो फिर यहाँ पे है ना फकातिलो, तो जंग करो, तो वो कहते हैं इसी से है कि उसकी सजा फिर मौत है। क्या? क्योंकि उसने मुआहदा तोड़ा है ना, इन्नकिसु, अगर वो मुआहदा तोड़ देते हैं, मुआहदा तोड़ा है, और कैसे मुआहदा तोड़ा है, वो उस स्टेट का बागी है, उस स्टेट के कानून को तोड़ा है उसने, स्टेट के कानून के अंदर ये है कि इस दीन की रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इमाम अबू हनीफा का इसमें ख्याल ये है कि वो कहते हैं कोई जिम्मी अगर स्टेट के कानून को तो नहीं तोड़ता मगर दीन में तौहीन की बात करता है तो उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि कुराने पाक में दो चीजें हैं, दो शर्तें हैं, एक ये कि वो अहद को तोड़ता है और दूसरी ये कि वो दीन में तानात करता है। लेकिन इमाम अहमद और जितने भी बाकी आइमा कराम है वो कहते हैं कि जो तौहीन इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब है तो यही ऐसा जुर्म है जिससे मुआहदा भी टूट जाता है, क्योंकि मुआहदा जो तोड़ने के लिए अलग थोड़ी है, मुआहदा तो उसने कंट्री के साथ किया हुआ, उस स्टेट की लॉज को मानने का मुआहदा किया हुआ, तो अगर वो तौहीन करता है इस्लाम की किसी भी चीजों की तो वो उसने उस मुआहदे को तोड़ दिया जो स्टेट के साथ भी था, तो उसके मुआहदा भी टूटा और उसने तौहीन भी की है, लिहाजा उसकी सजा मौत है फिर, ठीक है। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि भाई तौहीन रिसालत की का कानून किस बेस पे है, तो ये तो सही कानून नहीं है और ऐसे है, तो फिर ये आयत इसके लिए, मगर इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि एक मॉब खड़ा हो जाए और लोग मिल जाएं और फिर उन पत्थर मारने शुरू हो जाएं और उनको मार मार के मार दे, ये सब अदालतों के काम है, ठीक है। तो इसको ये नहीं समझना कि को किसी ने सुना और किसी ने कह दिया मैंने सुना, पता नहीं उसने सुना भी या नहीं सुना, या सुना तो क्या सुना और दूसरे ने क्या कहा और ना कोई गवाही है ना कुछ है, बस लोग मिलके और जाके दूसरे के घर के ऊपर हमला करके तो उनके आग लगा रहे हैं और मार पीट रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ये फिर ये नहीं है, ठीक है। हर कानून जो है वो अदालतों के अंदर जाएंगे, लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। अला तुकातिलुना कौमन, अला क्या नहीं तो कातिलूना कौमन, तुम जंग करोगे एक ऐसी कौम से, नकफू अईमानहुम, जिन्होंने तो तोड़ दिया अपनी कस्मों को, वहम भी इखराज रसूली, और उन्होंने रसूल को निकालने का इरादा कर दिया, वहां हम बदा उकुम अव्वल मर्रतिन, और वो लोग हैं कि जिन्होंने इब्तदा की तुम्हारे साथ पहली दफा। अच्छा अब ये क्या है, ये है चार्जशीट इन कुरैश के खिलाफ, ये है उनके जराइम की लिस्ट कि इन्होंने क्या क्या किया है। अब आपको मैंने जो बात कही थी ना उसको यहां पे समझें, ये बताया जा रहा है कि तुम क्यों नहीं लड़ते इनके साथ, अगर हम इसको फतह मक्का के बाद की बात समझें कि बाद की ये आयतें हैं, तो फिर तो इनका समझ ही नहीं आती कि ये कैसे हैं। ये फतह मक्का से पहले की हैं। मुसलमानों को कहा जा रहा है, तुम क्यों नहीं लड़ते ऐसे लोगों से? और ये आगे भी आएगा, दोबारा भी आएगा, क्यों नहीं लड़ते तुम ऐसे लोगों से? कातिलूहुम, उनसे लड़ो, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए आप थोड़ा सा समझें कि ये जो मदीना में रहने वाले मुसलमान हैं, एक असल में कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके खानदान कहाँ से थे, इनकी बैकग्राउंड किधर है? मक्का में इनकी रिश्तेदारियां तो मक्का में थी, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो वहां पे ही थे मक्का में, वो अपनी कमजोरी की वजह से हिजरत नहीं कर सके थे, ये भी था बात एक। और इसी तरह बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिनके रिश्तेदार वहां पे थे। हातिब बिन अबी बलता का वाक्य आपको पता है ना, बदरी सहाबी हैं, और फतह मक्का से पहले उन्होंने लेटर जो है कुरैश की तरफ भेज दिया था, वो एक गाने बजाने वाली आई थी उसको दे दिया था, उसने अपने बालों के अंदर डाल लिया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आई, पता चला कि ये इस तरह से राज आपका फाश होने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे हजरत अली को और उन सहाबा को दौड़ाया, और उन्होंने जाके उसको पकड़ा, उसने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं है। ने कहा तो अल्लाह के नबी सच्चे हैं, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, तुम्हें नंगा करके अगर तुमने ना दिया, तो फिर उसने अपने बालों से निकाल दिया वो लेटर। जब वो लाया गया तो उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि मुसलमान हमला करने वाले। तो पूछा गया, जबकि आपने ऐसे क्यों किया, ये तो एक गद्दारी हो गई ना, तो पूछा गया, तो बताया कि मेरे बीवी बच्चे वहां पे, मैं इस्लाम से गद्दार नहीं हूँ, मेरी ऐसी कोई बेवफाई करनी, मैं सिर्फ ये कहता था कि मैं शायद कुरैश पे कोई एहसान कर दूंगा तो मेरे बीवी बच्चों के साथ अच्छा रखेंगे और उनको कोई तकलीफ नहीं वहां पे देंगे। नहीं, उनको ये होता था कि वहां पे बीवी बच्चे वहां रह गए, देखो खुद यहाँ पे आ गए, अब एक ऐसी कौम के अंदर है जो दुश्मन हो गए, तो कितना मुश्किल है ना ये, कि अब बीवी बच्चे उधर रहे हैं, रिश्तेदार उधर रहे हैं, और हर एक को चचा मामू खाला, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो थे ना, तो रिश्तेदारियां वहां पे तो थी ना, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मैंने इस वजह से किया था। तो अब मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है कि किसी ऐसी जगह के ऊपर जाके लड़ना जहां पे आपके प्यारे हैं। तो सहाबा के दिल के अंदर ये बात आ रही थी कि मुआहिदा तो टूट गया, अगर जंग होगी तो हमारी रिश्तेदारियां वहां पे, और वहां पे वो कमजोर मुसलमान भी हैं जो वहां बेचारे रह गए हैं, नहीं उन्होंने हिजरत की, तो क्या बनेगा इस सब का? तो उनसे कहा जा रहा है, हला तो कातिलूना कौमा, तुम नहीं लड़ोगे ऐसे लोगों से? जिन्होंने क्या किया, इन्होंने सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को खुद तोड़ा, इन्होंने रसूल को निकालने के लिए इरादा कर लिया था, यानी आपको पता है जो दारुल नदवा के अंदर बैठ के इन्होंने सारी कार्रवाई की थी, जो सारा प्रोग्राम बनाया था। अब बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि अब लिंक आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप समझेंगे कि ये वो कहाँ से ये बात आ गई, वो तो वहां पे ऐलान कर रहे थे हज पे, वो हज पे जो ऐलान हो रहा था वो अब बात खत्म हो गई है, अब दूसरी बात चल रही है जो उससे पहले की है, अभी फतह मक्का होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अब इनको कहा जा रहा है तुम क्यों नहीं लड़ते ऐसे लोगों से, ये तो रसूल को निकालने के दर पे हो गए थे, उन्होंने तो अपनी तरफ से निकाल ही दिया ना, इन्होंने इरादा कर लिया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ निकालने का तो छोड़े, उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी वजह से ही वहां से हिजरत करने पे मजबूर हुए, वरना इन्होंने तो क्या किया हुआ था कि आपको कत्ल कर दें। वहुम बदाऊकुम अव्वल मर्रा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया पहली दफा, मुसलमानों ने नहीं स्टार्ट किया, जुल्म और ज्यादती किसकी तरफ से स्टार्ट हुई, इनकी तरफ से, टॉर्चर इनकी तरफ से हुआ, बदर में ये लोग आए, उहद में ये लोग आए, अहजाब में ये लोग पूरा लश्कर लेकर आ गए, इनकी तरफ से हमेशा स्टार्ट हुई, और सुलह हुदैबिया में भी इन्होंने नहीं हरम में जाने दिया, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुसलमानों को रोका जाता, मुसलमान छोड़ें किसी को भी नहीं रोका जाता था हरम में आने से, लेकिन इन्होंने ये काम किया। अतख्शौनहुम, कहा गया क्या तुम डरते हो उनसे, फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मोमिनीन, तो अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम डरो उससे अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह ज्यादा हकदार है। अब ये बात वाकई अगर हम इसको याद कर लें या पल्ले बांध लें कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हम जिससे भी डरते हैं, तो क्या तुम उनसे डरते हो, वो मेरा नुकसान कर देगा, हाय वो मुझे मेरे साथ ये कर लेगा, किसी से भी ना डरो, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम ईमान वाले, ना कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता है, तुम क्यों डरते हो किसी से भी? डरना है तो अल्लाह से डरो, खुदा खौफी इंसान को सीधा रखती है, इसलिए ये कहा गया। खुदा खौफी होगी तो इंसान स्ट्रेट चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो आके, ईमान है तो फिर लोगों से डरने की जरूरत नहीं, इंसानों की खौफ खाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। देखिए, जिसका ईमान अल्लाह पे, सारी कायनात को मेरा रब चला रहा है, दिल उसके कब्जे में है, हर नफा नुकसान उसके कब्जे में है ना, हर एक पत्ता भी जो हिलता है और जो गिरता है दरख्त से, वो उसके कब्जे में है और उसके इल्म में है। तो मैं फिर लोगों से क्यों डरूं? ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये मुझे क्या नुकसान देंगे, और ये या मेरे क्या काम आ सकते हैं, या ये मेरा क्या भला कर सकते हैं? अगर अल्लाह ना चाहे तो जिसके हाथ में पूरी कायनात है, सूरज चांद सितारे, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है, वो उसके हुक्म के पर चल रही हैं, तो ये मेरे काम क्या चीज है और मेरे मामलात क्या चीज है? फिर मैं कहीं इस बात से डरती हूं कि यहां से मेरी नौकरी ना चली जाए, कभी मैं इस बात से डरती हूं कि ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कभी मैं इस बात से डरती हूं कि हाँ ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे, ये मेरी बुराई ना कर दे, ये मुझे कुछ कह ना दे। क्यों डरते हैं उनसे? और हमारे अंदर खौफ तो इतना भरा हुआ है ना कि कोई भी अल्लाह को हुक्म मानने लगते हैं तो पहले खौफ आ जाते हैं, हाय वो क्या कहेंगे, हाय फिर ये क्या कहेगा, हाय फिर वो मुझे सताएंगे, हाय फिर वो ऐसे करेगा, और फिर हम छोड़ ही देते, नहीं नहीं फिर मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं बातें सुनी जाएंगी। तो उस वक्त अपने आप के लिए ये हाईलाइट कर लें इस आयत की, इस हिस्से को, फल्लाहु आपको अंतक्षव इन कुन तुम मोमिनीन। तो ये सारी बातें समझ आ रही है कि अल्लाह फिर ज्यादा हकदार है कि तुम डरो, तुम इनसे लड़ने से डरते हो क्या? तुम्हें तो अल्लाह से डरना चाहिए क्योंकि वो हकदार है। ईमान वाले का, देखिए ईमान होता ही क्या है, ईमान यकीन, वो यकीन जो दिल के अंदर है। अगर अगर दिल में यकीन ही नहीं, अगर दिल ने माना ही नहीं हुआ अल्लाह को सबसे बड़ा और सबसे कवी और सब चीज जानने वाला और सब फैसलों को अमल में लाने वाला और जिसकी मर्जी हर तरफ चलती है, ये अल्लाह ताला की सिफात को मानता ही नहीं, तो क्या ईमान है फिर? कातिलूहुम, जंग करो उनसे, युअद्दिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इसलिए जंग करो कि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलाएगा। अब इसके मैं आपको पिछली बैकग्राउंड बता दूं जरा, आयत 13 आयत 12 के कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है, तो आयत ये सारी एक साथ ही चल रही है ना बात, कि अगर वो तुम्हारे साथ तोड़ते हैं अहद तो तुम उनसे लड़ो, और तुम्हारे दीन में ताना भी करते हैं उनसे लड़ो, क्यों नहीं लड़ते उनसे जबकि उन्होंने तो ये काम किए हैं, ये उनके जो जराइम है वो ये हैं। फिर फरमाया 14 में, लड़ो उनसे, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको अजाब देगा। क्योंकि देखे जितनी कौमों पे पहले अजाब आए, आपने अब कौम लूत पढ़ा, कौम शुएब पढ़ा, कौम सवाले, कौम आद, कौम नूह, जितनी कौमों में आपने पढ़ा, तो क्या हुआ था उनके अंदर जब उन्होंने रसूलों की दावत को झुटलाया था, तो क्या बना उनका? उनके ऊपर एक इज्तमाही अजाब आया, कौम फिरौन पे भी इज्तमाही अजाब आया, और वो सब हलाक कर दिए, उसमें चाहे छोटा बच्चा था, बूढ़ा था, जवान था, कोई भी था, सब चले गए, सिर्फ अल्लाह ने पैगंबर को बचा लिया और उनके मानने वालों, यही है ना सारी बात। अच्छा यहाँ क्या हुआ, इन्होंने भी तो पैगंबर को झुटलाया, इन्होंने तो पैगंबर की कत्ल की साजिश कर दी, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कोई इज्तमाही अजाब भेज के छोटे बड़े और उनकी सारी नस्लों को खत्म नहीं कर दिया, इनको जड़ से नहीं उखाड़ दिया, इनको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों सजा दिलवाई। कैसे? बदर के अंदर आप देखें, इनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए, और फिर इनकी जो उसके बाद भी रुसवाई, इन जब मक्का फतह हो गया तो इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, वयुख्जीहिम, और रुसवा करेगा उनको अल्लाह ताला, इनको रुसवा करेगा तुम्हारे हाथों से। और आप देखें इजाब दिलाया ना अल्लाह ताला ने जिस वक्त, चले आगे बताती हूँ, वयंसुर कुम अलैहिम, और मदद करेगा तुम्हारी उनके खिलाफ, तुम अकेले नहीं हो, तुम ये ना सोचो अब क्या होगा, अब उनको नुकसान ना हो जाए, किसी और को ना हो जाए, नहीं, तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह ताला उनके खिलाफ, और यशफी सुदूर कौम मुमिनीन, और ठंडा करेगा सीनों को मोमिन कौम के। यानी जब आप देखें कि उमैया बिन खल्फ ने हजरत बिलाल पे कितना जुल्म किया था, जिस वक्त बदर में हजरत बिलाल ने उसको देखा था ना, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, आज नहीं ये बच सकता, और उन्होंने उसको कत्ल करके छोड़ा। उनका सीना कब ठंडा होगा? उनको कब इंसाफ मिलेगा? उनको कब उनकी उनकी तसल्ली कब होगी, जबकि वो खुद उसको मारेंगे जिसने उनके साथ ये किया था। ठीक है ना? और फेयर इनफ, जिसने उनके साथ देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे हाथों से उनको अजाब दिलाएगा, उनको रुसवा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे सीनों को अल्लाह ठंडा करेगा। कि वो एक एक को पकड़ोगे जब और उसको मारोगे, तो फिर खुद ही मुसलमानों के सीने ठंडे होंगे। अबू जहल को जो मारा गया, तो अल्लाह ताला ने तो इनके साथ करम किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत को ऐसे जैसे पिछली उम्मतों को मिलिया मेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अल्लाह ऐसे ना करना इनको। तो आपकी उम्मत के ऊपर कभी ऐसा अजाब, उम्मत में सारी ही आप ये जितने भी लोग हैं ना, सब आपकी उम्मत है। एक उम्मत है दावत है, जिसको अभी दावत देनी है, एक उम्मत वो है जिसने दावत कबूल कर ली है, बस ये फर्क है। ये उम्मत ही है सारी। तो इनको अल्लाह ताला ने ऐसे खत्म नहीं किया जैसे दूसरे पैगम्बरों की उम्मतों को खत्म किया गया, बल्कि इनको इंडिविजुअली सजा दी गई और इनको मोहलत बहुत दी गई। वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम, और ले जाएगा गुस्सा उनके दिलों का। यानी जो इन मुसलमानों ने जिन्होंने जुल्म सहे हैं, अब इनकी बारी है कि वो अपना गुस्सा ठंडा करें। जब इनके साथ वो लड़ेंगे तो इनका गुस्सा भी ठंडा होगा। और ये कोई आस कहना आसान है, लेकिन जो जुल्म उनके साथ हुए थे और जो टॉर्चर हुए थे, तो अब इनको भी मौका मिलना चाहिए। वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, और मेहरबान होगा अल्लाह जिसको ऊपर चाहेगा, वो जिसको तौफीक दे दे। फिर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ, खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने तौफीक दे दी इस्लाम लाने की, अबू सुफियान को दे दी। तो वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है। उसकी हिकमत है, उसको पता है किसको ईमान की दौलत दे देनी है, उसको पता है किसने मुसलमान हो जाना है, उसके इल्म में है और उसकी हिकमत है इन सारे अहकामात पे। कोई इंसान सोचेगा ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं, वो ये उसकी हिकमत है, उसके सारे फैसले हिकमत पे मबनी है। तो उसको पता है कि किस तरह से मुसलमानों के दिलों को ठंडा करना है, किस तरह से उनको तसल्ली देनी है, किस तरह इनका गुस्सा दूर होगा। तो अल्लाह ताला तो एक कुंड के आके एक चीख से भी मरवा सकता है किसी को। ऐसी भी कौमें थी कि जिनको चीख का अजाब आया और चीख से ही वो खत्म हो गए। लेकिन अब इनको ये मौका दिया गया कि तुम अब इनके साथ लड़ो, ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो। तो ये आज की आयत थी। अल्लाह ताला हम सबको इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, सही समझने की, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
جزاك الله خيرا كثيرا. جی سب سے پہلے تو آج ہم دعا کریں گے ہمارے تمام نیو جرسی کے لوگوں کے لیے اور خاص الخاص وہاں پہ جو مسلمان ہیں اور